और उसके बाद इसका इम्पैक्ट जो होता है लाहवल हदीस का इम्पैक्ट क्या होता है, मैंने जो आपको अभी बात बताई, आप सोच रहे होंगे पता नहीं इसकी दलील क्या है कि भाई अब एक बंदा लाहवल हदीस में है, नहीं जी हम तो कुरान भी उतना ही पढ़ते हैं, हम उतना ही लाहवल हदीस में है लेकिन उतना ही हम कुरान की तरफ भी है, ऐसा नहीं होता। जो लाहवल हदीस के अंदर गर्क हो ना फिर उसका हाल क्या होता है, वह इज़ा तुतला, अब वाह का पता रहा है, वाह बता रहा है कि पीछे से बात जो आ रही है उसकी कंटिन्यूएशन है, ये कोई नए बंदे की बात नहीं हो रही, वाह और इज़ा जब, और इज़ा और इन ये दोनों के जब के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन इन उस बात के लिए आता है जो कभी कभार हो, और इज़ा जो यानी कसरत से होती हो वो बात, यानी जिसको मैंने आपको कहा ना जब जब भी, व्हेनेवर, जब जब भी तुतला अलैहि आयातुना पढ़ी जाती हैं इस पर हमारी आयात, तो क्या करता है, होना तो ये चाहिए कि आयात को सुन के और उसको दिल में उतारें और सोचें कि ये हमें हम किस तरफ लगे हुए थे, वो उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है, उसके ऊपर क्या असर होता है, वल्ला मुस्तकबिरन, वो पीठ फेर के रुख फेर के तकब्बुर करते हुए, उसका हाल क्या होता है, उसकी जो जो कैफियत है वो दिखाई गई यहाँ पे कि वो रुख फेर लेता है और तकब्बुर के साथ, इन तकब्बुर किस लिए आता है, एरोगेंस किस लिए आती है, मैं क्यों ये सुनूं, ये क्या खुद को अल्लाह के कलाम से ऊपर समझता है ना, तो का अल्लम यस्माहा, गोया के सुना ही नहीं इनको, अल्लाह माफ करमाए, बाज लोग फिर ऐसे भी हो जाते हैं कि वो कुरान की मजलिस में भी बैठ के वो कहते हैं हम जल्दी क्यों आ गए, हमने तो सोचा था ये ख़त्म कर दिया होगा इन्होंने अब तक, और कोई खाना पीना गपशप शुरू होगी, ये तो अभी तक उसी पे लगे हैं, अब उनको बेजारी हो रही होती है और चेहरों से पता चल रहा होता है कि ये बेजार है, वो सुन ऐसे रहे होते हैं जैसे कि कुछ सुना ही नहीं, कभी खला में देख रहे हैं, कभी फ़ोन को निकाल के देख रहे हैं, कभी कुछ, दिल ही नहीं लग रहा। देखें दिल के अंदर जब बीमारी आ जाती है ना, इलावल हदीस का टेस्ट लग जाता है, जब उसके चस्के लग जाते हैं तो फिर नहीं ये बातें ना समझ आती ना अच्छी लगती है। अल्लाहु अकबर। आपने कभी देखा होगा जो खासतौर पे इन चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो गाते हैं चाहे वो कोई जिनको आप कहते हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको तो सुना के तो दिखाएं कुरान से, उनको दिल नहीं चाहता सुनने का, उनको ना सुनने का शौक़ है ना कोई इसको सीखने का शौक़ है ना उनको, फिर आप कहते हैं पता नहीं लोग इस तरफ क्यों नहीं आते, लोग इसलिए नहीं आते कि उनकी ज़िंदगियों में लावल हदीस भरी हुई है, आप देख लें इसकी वजह से ये रिएक्शन होता है, ये सुना ही नहीं है कहीं, अगर पढ़ी गई बात का अन्न फी उदू नहीं ही वकरा, ऐसे उनको लगता है जैसे उनके कानों में बोझ है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, या अल्लाह ताला इस अंजाम से बचाना, अल्लाह हम सबको महफूज रखना इससे, कि उनको कुरान ऐसे लगता है बजाय कि दिल की बहार बन जाए, बजाय कि गम और हम का मदावा बन जाए, बजाय कि उनके लिए शिफा बन जाए, रहमत बन जाए और हिदायत बन जाए, उनके कानों के लिए बोझ बन जाता है, ऐसे लगता है जैसे आप कोई बातें ना सुननी भी इंसान को बड़ी मुश्किल लगती हैं, जैसे जैसे जो लोग कुरान की तरफ होते हैं उनके लिए ये लाहौल हदीस सुनना मुश्किल हो जाता है, ये उनको बोझ लगने लगता है, इसी तरह उनको ये बोझ लगता है, समझ आ गई बात, दोनों मैंने आपको बताया ना दोनों डायरेक्शंस बिल्कुल डिफरेंट हैं, कोई कोई कह ही नहीं सकता कि मैं दोनों के अंदर हूं, ऐसे हो ही नहीं सकता, आपकी जिंदगी में एक चीज जरूर ज्यादा होगी जिसका इम्पैक्ट होगा, दूसरी बस साइड लाइन चल रही होगी, नो ये नहीं हो सकता दोनों में आप गुपे में, जिसके दिल जिसकी जिंदगी में लाहवल हदीस है ना और वो उसके अंदर गर्क है, उसका ये है अंजाम, यानी उसके ऊपर ये है कुरान का इम्पैक्ट उस पर ये है, और इसी तरह जो कुरान के अंदर खुबा हुआ है और उसके अंदर उसने अपने आप को लगाया हुआ है, वो जब लाहवल हदीस सुनता है तो उसका भी दिल इसी तरह बेजार होता है और उसके लिए भी बोझ इसी तरह बनता है कि कानों पे बोझ है, कानों का बोझ बन गया, कानों का बोझ इसीलिए बना ना, अब वो इस रास्ते पे नहीं है, इसे पता चल गया ना आपको, वाजे हो गया ना कि अल्लाह का कुरान और लाहवल हदीस और गाना बजाना और ये सारी ये जो चीजें हैं ये साथ साथ नहीं चल सकती, अगर साथ साथ चलेंगी तो कुरान की आयात इंसान सुनी अनसुनी कर देगा, फिर सरूर नहीं आएगा अल्लाह की आयात में, फिर गाने बजानों में ही सरूर आएगा। उसकी नहुसत इतनी होती है गाने बजाने की, वो कुरान से दूर कर देती है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। फिर किसी चैनल पे भी कुरान चल रहा होगा ना तो उसको भी चेंज कर देते हैं, कोई लेक्चर आ रहा होगा तो वो सुनना बर्दाश्त नहीं होता, कोई पढ़ के सुना रहा है तो उसमें दिल नहीं लगता, फिर अल्लाह की आयात की तफसीर की जा रही होती है तो उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। हाँ वो जो म्यूजिक है वो उनको सुनते भी रहेंगे तो उसमें बड़ा मजा आता रहता है। यो दिलु भी कसीरा व यादी भी कसीरा, इसी कुरान से लोग गुमराह भी हो जाते हैं, इसी से हिदायत भी पा लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फबशिरहु बिअज़ाबिन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अजाब की बशारत दे। तो पिछले वालों के लिए क्या था? अहानत वाला अजाब। उनके लिए अहानत वाला अजाब क्यों था? तुम मेरे कुरान के साथ ऐसा करते हो, तुमने इसको बिल्कुल हल्का समझा और इसको कोई अहमियत नहीं दी, इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, अपने आप को इम्पोर्टेंस दी है, अपनी बात को और अपने शौक को, तुम्हारे लिए रुसवा करने वाला अजाब है। तुमने इसको इज्जत नहीं दी, तुम्हें भी इज्जत नहीं मिलेगी। और देखें, सोचें, इंसान को दुनिया में बेइज्जती से इतना डरता है कि लोगों में कहीं बेइज्जत ना हो जाऊं, उसके लिए वो उल्टा सीधे काम भी करने को तैयार हो जाता है, कहीं खर्च नहीं भी करना वहाँ पे भी खर्च करता है, अपनी मर्जी के खिलाफ भी काम करता है। क्यों? इसलिए कि हाँ बेइज्जती ना हो जाए लोगों में, लोग क्या कहेंगे। छोटी छोटी बातों में हम नोट करें, हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, हमारी बेइज्जती ना हो जाए। आप खुद अंदाजा करें, जहाँ पे सारी मखलूक होगी वहां पे अजाब मुहीन कैसा होगा। इंसान ना किसी के सामने फिसलने से गिरने से डरता है, क्योंकि फिसल गई तो सारे हंसेंगे, बेइज्जती हो जाएगी, इतनी सी चीज से भी डरता है। और कहां ये कि पूरी मखलूक के सामने उसको घसीटा जा रहा है, उसको पकड़ के बालों से खींचा जा रहा है, उसको अजाब की तरफ ले जाया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है। अंदाजा तो करें, किसी इंसान को आपके सामने ऐसा हो रहा हो, अंदाजा करें उस बंदे की जिल्लत कितनी उसको महसूस हो रही होगी। इंसान कहता है कि मुझे कहीं कमरे में बंद करके 10 थप्पड़ मार लो, लोगों के सामने ना कुछ कहो, एक लफ्ज भी, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इतनी उसको अपनी इज्जत प्यारी होती। लेकिन उसके लिए वहां अहानत वाला अजाब। और फिर फरमाया फबशिरहु, इसको बशारत दे दो। बशारत तो खुशी की बात की दी जाती है, इसको अजाब की दे दो। ये उसके ऊपर तंज है, ये उसके उसके साथ एक मजाक किया जा रहा है, क्योंकि तुम भी मजाक बनाते थे ना अल्लाह के रास्ते को, तुम्हारे लिए ये है, तुम्हारे साथ अल्लाह भी मजाक करता है। फिर तुम्हें बशारत है, लेकिन किसकी? दर्दनाक अजाब की। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। ये उसके लिए है जो अल्लाह की आयात को सुनने से मुंह फेर जाए तकब्बुर करते हुए, और उसके लिए भारी हो अल्लाह की आयात, वो एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे, ऐसे लगे जैसे कि कल सुना ही नहीं। और बाज़ लोग वाकई ऐसे होता है, अजानें हो रही हैं मस्जिदों में, अल्लाह की तरफ बुलाया जा रहा है, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, बाहर से गुजर के ऐसे जा रहे होते हैं जैसे कोई किसी ने कुछ कहा ही नहीं, मस्जिद के दरवाजे के आगे से गुजर रहे हैं, वहीं कुरान पढ़ के सुनाया जा रहा है, कोई परवाह ही नहीं, ऐसे ही बस ऐसे लग रहा है कि कुछ हो, कुछ कोई बोल ही नहीं रहा, वो अपनी दुनिया में गुम है। ये भी अल्लाह की तरफ से एक सजा है इनके इस बिहेवियर की। अस्तग़फिरुल्लाह। अगर ऐसी चीज़ों में कोई इन्वॉल्व हो तो इस पे तौबा इस्तग़फार करनी चाहिए, लाहवल हदीस को छोड़ देना चाहिए ताकि कुरान की तरफ दिल लगे। बाज़ लोग कहते हैं हमें बड़ा ही शौक है लेकिन बस दुआ करें, बस दुआ करें। भाई अगर आपको शौक है, वाकई आप करना चाहते हैं, और वो कहते हैं हमसे होता नहीं, पता नहीं क्यों नहीं होता, तो ये जो ऐसा मसला अगर किसी का है तो फजूल बेमकसद जो चीज़ें आपको अपने अंदर मशगूल कर लेना, लाहवल हदीस हैं जो, उनको छोड़ दें, उनको अल्लाह के कलाम पे प्रेफर ना करें, खरीदें, खरीदना ही नहीं सिर्फ यहाँ पे, प्रेफर ना करें। ये लोग देखें प्रेफर कर रहे हैं लाहवल हदीस को, उनकी प्रेफरेंस है अल्लाह के रास्ते के ऊपर, ये प्रेफर करते हैं यानी उसको तरजीह देते हैं, उसको ऊपर रखते हैं, उसके लिए वक्त निकालते हैं। जिस चीज को आप तरजीह देते हैं वो क्या होता है, मैंने आपको बताया ना यश्तरी का एक माना ये भी है ना, प्रेफरेंस देना, वो प्रेफर करते हैं लावल हदीस को किसी और अल्लाह के, अल्लाह की बात के मुकाबले में, अल्लाह की आयत के हुए फ़राइज़ के मुकाबले में, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में, अल्लाह ताला के लिए कोई नेकी का काम करना, खैर का काम करना उसके मुकाबले में, इन सब के मुकाबले में वो प्रेफर करते हैं लाहौल हदीस। देख लें तो फिर नीचे नीचे ही जा रहे हैं ना, फिर उसके बाद मजाक भी उड़ाना शुरू हो गए, फिर कुरान भी उनके पर असर नहीं करता, दिल सख्त होता जाता है ना फिर। और वो लोग इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन नईम, बेशक वो लोग जो ईमान ले आए और साले अमल उन्होंने शुरू कर दिए, अगर कोई लावल हदीस में पढ़ा वो भी अगर तौबा करके इस तरफ आ जाता है और अमले साले शुरू कर देता है तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। लहुम जन्नात नईम, उनके लिए जन्नात हैं, एक जन्नत नहीं है, जन्नत नईम नहीं, जन्नात है यानी बागात हैं, प्लूरल है, एक के ऊपर एक बाग, एक के ऊपर एक बाग, यानी एक के बाद एक, उनके पास एक बाग नहीं है, बहुत सारे बागात हैं। अल्लाहु अकबर। और नईम नेमतों वाली, तुम यहाँ पे प्लेजर चाहते हो, वहां पे अल्लाह ने इतना प्लेजर रखा है, वो तो फुल ऑफ प्लेजर्स है, मजे ही मजे, खालिदीना फिहा, वहां से तुम्हें कोई निकालेगा नहीं, हमेशा वहां रहना है। अल्लाहु अकबर। जन्नत नईम में ना नेमतें भी सारी जमा हो गई, इसम जामे है ये, बहुत सारी नेमतें जमा हो गई, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, वहां पे इवन सुरीली आवाज भी होगी जो वो सुनेंगे और उसका मजा लेंगे। लेकिन जो दुनिया में इन चीजों से खुद को बचा के रखता है, अल्लाह वहां सुनाएगा, उनके जिस्मों पे ना कोई बाल होगा, ना पसीने की कोई स्मेल होगी, खुशबू होगी उनका पसीना भी, ना कोई छींक होगी, ना कोई खांसी होगी, ना कोई पेशाब बहाना होगा। और वहां पे इसलिए नहीं खाएंगे कि भूख लगी हुई है तो हाय खा लें, वहां पे लज्जत के लिए खाएंगे, इंजॉयमेंट के लिए। तुम यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए ये चीजें करते हो ना, लाहवल हदीस इसकी तरफ भागते हो। देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए नेमतों भरी जन्नत रखी है जिसमें इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है। अगर ये दुनिया जन्नत नहीं है, यहाँ पे इसको इंजॉयमेंट की जगह मत बनाओ, ना समझो। अल्लाह अकबर। खालिदीना फीहा, और ये खालिदीना फीहा जो है ना, ये सिर्फ हमेशा रहने के लिए नहीं है, बल्कि ये पीछे की कंटिन्यूएशन आ रही है कि ये जो जन्नत की नेमतें हैं उनके अंदर वो हमेशा रहेंगे, यानी वो जन्नत की नेमतें भी चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, ऐसा मज़ा चलता रहेगा, कभी बोरियत नहीं होगी कि वहाँ पे अब थक गए इन नेमतों से और अब हम क्या करें। अब इंसान को जब बहुत ज़्यादा जन्नत की बातें बताई जाए ना, तो वो सोचते हैं जब सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रही होंगी, सारी इंजॉयमेंट होगी, तो फिर हम तो बोर हो जाएंगे उससे। अरे तुम इन मसलों भरी दुनिया से तो बोर होते नहीं हो, जहाँ पे एक के बाद एक गम और परेशानी और मुसीबत और मसला पड़ा हुआ, इससे तो तुम बोर होते नहीं, तो मज़ों से बोर हो जाओगे। कौन नहीं चाहता एक आइडियल लाइफ, सारी ज़िंदगी हम इसी मेहनत मुशक्क़त में लगे रहते हैं कि वो आइडियल लाइफ मिल जाए जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हों। हाँ, इसके लिए हम अपनी आप को हल्कान कर लेते हैं काम कर करके, ऐसा बस घर हो जाए, ऐसी गाड़ी जाए, सब बच्चे भी अच्छे उसके ऊपर हो जाएं और सब मेरा अच्छा चल रहा हो, तो कितना अच्छा हो। हर इंसान ड्रीम करता है इसके लिए। ओ, जो आपकी ड्रीम है, जब आपको अल्लाह बता रहा है कि वहाँ पे ऐसा मिलेगा, तो कहते हैं बोर हो जाएंगे वहाँ पे। कैसा शैतान ने धोखा दिया था, जिसके लिए यहाँ हलकान हो रहे, अल्लाह ने उसी का तो वादा किया है, बस उसने ये बता दिया कि ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तुम्हारा ड्रीम हाउस, ड्रीम वर्ल्ड जो तुम्हारी है वो वहाँ पॉसिबल है सिर्फ। वादल्लाहि हक्कर, अल्लाह का वादा सच्चा है। ये यकीन दिलाने के लिए हमें कि ये बात हो के रहेगी, इसमें शक ना करना, अल्लाह की तो हर बात ही सच्ची है। फिर क्यों कहा गया वादल्लाहि हक्कर, ताकि जब कह दिया जब वादा है, तो वादा कोई, लेकिन कोई भी एक अच्छा इंसान भी होता ना, तो वो भी कहता है कि मैंने वादा कर लिया है ना, तो मैंने इसको पूरा करना है। कोई नेक सिफ्त इंसान होता, ये तो अल्लाह का वादा है, और जब कोई वादा कर ले, और अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कोई नहीं, तो वो फिर उसको ज़रूर पूरा करेगा। तो ये चाहे लाखों साल बाद क़यामत आए और उसके बाद जन्नत हो और वहाँ पे हशर हो और सारा कुछ हो, चाहे करोड़ों साल बाद आए, चाहे हज़ार साल बाद आए, जितने सालों बाद मर्जी है, ये ना समझना कि अल्लाह भूल जाएगा अपना वादा, उसका वादा सच्चा है। तुम भूल सकते हो, अल्लाह नहीं भूलता। तो वो चाहे कितने भी सालों बाद आए, मगर ये वादा सच हो के रहेगा कि ईमान और साले अमल वाले जन्नतों में रहेंगे जो नेमतों वाली हैं। और ये देखें कि जब जहन्नुम की बात आई तो उस वक़्त नहीं आया, ये अल्लाह का वादा है जो सच्चा है कि उनको अजाब अलीम मिलेगा, अल्लाह का वादा है, इस उसमें क्यों नहीं आया? यहाँ पे क्यों आया कि अल्लाह का वादा है? सजा के लिए तो नहीं आया, यहाँ पे वादा इसलिए आया एम्फसाइज करने के लिए, ताकीद के लिए कि ये ज़रूर होके रहेगा। आग में डालना अल्लाह का कोई शौक नहीं है, आग में लोगों को फेंकना और उनको अजाब देना अल्लाह ताला की कोई चाहत नहीं है। उसने मखलूक को इसलिए नहीं पैदा किया अपने हाथों से कि इनको आग में डाल दे, वो होगा तो सही, लेकिन उसके लिए कोई अल्लाह का ऐसा शौक चाहत नहीं है। इसके लिए अल्लाह ताला ताकीद से फरमा रहे, मेरा तुमसे वादा है कि ये मैं करूँगा। वह अज़ीज़ुल हकीम, और वो अज़ीज़ भी है, हकीम भी है, वो ज़बरदस्त है, वो कुव्वत वाला है, कोई रोक नहीं सकता उसको इस वादे को पूरा करने से, कोई उसके लिए आड़ नहीं बन सकता, कोई रुकावट नहीं बन सकता। और दुनिया में तो इंसान बाज़ वादे कर लेता उसको निभा भी नहीं पाता, फिर उसके बाद वादे तो बड़े बड़े कर लेते हैं, मैंने ऐसे करूँगी वो करूँगी, उसके बाद जब आप पूछने जाएँ तो उनका कोई अता पता ही नहीं मिल रहा, उनकी उस कैपेसिटी में ही नहीं होता ना कि वो उसको निभा सकें, उसको पूरा कर सकें, उनकी ताकत में ही नहीं होता। अल्लाह के साथ ऐसा नहीं है, वो ज़बरदस्त है, गलबा रखता है, कुदरत रखता है कि वो इसको पूरा करे, और हकीम भी है, हिकमत वाला है, वो कभी भूलेगा नहीं अपने वादे को। अल्लाह अकबर, देखो कैसे कैसे अल्लाह ताला यकीन दिलाता है ताकि आप यकीन करके इन कामों को करो, इनमें इनकी तरफ आओ, कैसे वो आपको कि ये किसी तरह मान जाए इस चीज को और इस रास्ते पर आ जाए, इसीलिए यकीन दिलाया जाता है ना। खलक समावाती बेगैर अमदिन, देखो उसकी निशानियों को ही देखो, आप देखें अल्लाह ताला ने कायनात की निशानियों से इंसान को ये याद दिलाया है, एक बामकसद सोच दी है कि ये लाहवल हदीस को छोड़ो और इनकी तरफ तवज्जो दो। देखो किसने पैदा किया आसमान को, उसने पैदा किया उस रब ने, बेगैर अमदिन बग़ैर सतूनों के, तरौना तुम देखते हो उसको। अब ये तरौना हा की दो माने हैं यहाँ पे, दोनों आपको पता होना चाहिए। एक माना ये कि तुम देख सकते हो उसको, कि तुम देख सको उसको, यानी जो तुम देख सको मतलब क्या है कि ऐसे बगैर सतूनों के पैदा किया जिनको तुम देख सको, यानी आप उनको विजिबल नहीं है, वो इनविजिबल से हैं, ऐसे सतून है। दूसरा माना यह है कि तुम देखते नहीं हो कि वो है ही नहीं है कोई सतून, यानी एक में यह है कि तुम देखते हो कि वो विजिबल ही नहीं है, देख ही नहीं, यानी तुम देखते हो उनको, कोई तुम्हें नजर आ रहे हैं, यानी तुम देख नहीं सकते, नजर आ रहे हैं कोई तुम्हें, और दूसरा तुम देखते हो ना कि नहीं है, बेगैर ही अमद है ये आसमान। और वाकई देखें एक चीज ऊपर खड़ी हुई है आसमान के अंदर ना, समावात बात आया, आसमानों को देखते हो, आसमानों से मतलब सिर्फ ये आसमान नहीं जो हमें नजर आ रहा है, बल्कि इसमें जो सूरज चांद सितारे सब चीजें आप देख रहे हो, कोई चीज भी ऐसे ही खड़ी नहीं हो जाती, उसको सब कुछ सपोर्ट चाहिए होती है, कहाँ से किस तार से ये जुड़े हुए हैं, कैसे खड़े हुए हैं, या आसमान है वो किन पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। कोई भी चीज ऐसे तानी हो, कोई चादर आप तो चादर ही तान लें अगर, तो उसके साथ भी कोई यानी आपको कुछ डंडियां खड़ी करनी पड़ती हैं, लगानी पड़ती हैं ताकि उसके ऊपर आप उसको बिछाएं, मतलब एक छत की तरह एक रखें आप, इसी तरह ये अपनी कैनोपीज वगैरह लगाते हैं आप, उसके साथ भी डंडियां लगी होती हैं, स्टिक्स लगी होती हैं, तो आसमान के लिए कौन से पिलर हैं, या तो इनविजिबल हैं या फिर हैं ही नहीं। सुभान अल्लाह। वह अलका फिल अर्द रवासिया, और देखो डाल दिए जमीन में, पैक कर दिए जमीन में, जमा दिए जमीन में पहाड़, अंतमीदा बिकुम के ढलक जाएगी तुमको लेकर, कि ये ना हो कि तुम्हें लेके ढलक जाए, इसलिए जमाए। अरे अल्लाह ताला की कितनी करम नवाजी और कितनी उसकी केयर है इंसान के लिए, कितना ख्याल रखता है इंसान का कि उसने इस जमीन को जहाँ पे इंसान को बसाना था वहाँ के लिए ये इंतजाम फरमाया कि जमीन ये डोलेगी, इधर उधर होगी। फ्लक्चुएट करे, टंबल करे, तो इससे हिलने से रोकने के लिए इसके अंदर पहाड़ों को गाड़ दिया। ये ऊंच की कुदरत तो है ही इसमें, लेकिन देखिए आपका ख्याल कितना है। वरना इंसान इस जमीन के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता था, इसने बार बार हिलती रहना था। और लुढ़क के लोग उधर जाके गिर रहे हैं, एक मिनट का, चंद बल्कि सेकेंड्स का ही होता है, या ज्यादा से ज्यादा मिनट का होगा, कोई जलजला आ जाए तो देख लें आपके हाल क्या होता है। आजकल आप देख ही रहे होंगे क्या हाल हो जाता है, हाँ, इमारतों का क्या हाल होता है, इंसानों का क्या हाल होता है। और अगर ये जमीन बार बार इसी तरह झटके खाती रहती तो फिर क्या हाल होता, कोई सर्वाइवल नहीं था यहाँ पे। अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये पुरसकून रहने के लिए, इत्मीनान से रहने के लिए ऐसा इसको बना दिया, वबस्ता फीहा मिन कुल्ली दाबतिन, और फैला दिए इसमें हर किस्म के जानवरों में से। सोचें कि यानी कितनी कितनी किस्में हैं जानवरों की जो यहाँ पे इस ज़मीन के ऊपर आबाद हैं, कि इंसान को आज तक ये भी नहीं पता चला कि कितनी अकसाम हैं, कितने किस्म के स्पीशीज़ हैं यहाँ पे। स्पीशीज़ का भी नहीं पता, अब हर एक में कितने यानी उनके, मसलन एक लाल चिड़िया है, चिड़ियाँ तो बहुत सारी हैं मगर लाल चिड़िया एक किस्म है उसकी। अब लाल चिड़ियाँ कितनी हैं ये पूरे, आप पूरी दुनिया का तो छोड़ ही दें, अपनी मसलन शहर में, आपके शहर में कितनी है, आपकी स्टेट में कितनी है वो रेड वाली चिड़ियाँ, को बता सकता है इंसान को तादाद भी नहीं पता। और ये सिर्फ एक लाल चिड़िया की बात है, चींटियाँ कितनी हैं यहाँ पर, इस स्टेट में कितनी चींटियाँ रहती हैं, कोई पता नहीं। और अभी ये हाल है, ये तो एक चीज़ जो आपको पता है, कई ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनका इल्म ही नहीं है इंसान को। आप डिस्कवरीज़ में रोज़ डिस्कवरी चैनल पे देखें तो रोज़ नई नई डिस्कवरीज़ होती रहती हैं, हमने ये डिस्कवर कर लिया, इस किस्म का एक बंदर, इस किस्म का एक कीड़ा, इस किस्म की एक मछली, वो कभी पहले कभी आज तक पता ही नहीं थी लोगों को कि ये इस किस्म की भी मछली होती है। नई नई चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, अलग दुनिया जहान में यानी पूरी ज़मीन पे इंसान फैला हुआ है फिर भी नहीं पता, कई अमेज़ॉन के जंगलों में अब हमें ये मिल गया। कितनी तरह के जानदार उसने बसा दिए ज़मीन पे, उनसे तुम तरह तरह के फ़ायदे उठाते हो, बास को खाते हो, बास का दूध पीते हो, बास और किस्म के फ़ायदे लेते हो। अल्लाह अकबर, व अनज़लना मिनस्समा ईमान, फिर हमने नाजिल किया, पहले थर्ड पर्सन में बात हो रही थी कि वो है जिसने पैदा किया, अब हमने नाजिल किया, क्योंकि वो बातें दूर की थी, आप तो उस वक्त थे भी नहीं जब अल्लाह ने बसाए जानदार, और जब अल्लाह ने पहाड़ यहाँ पे गाड़े, और जब अल्लाह ने आसमान बनाए, लेकिन हमने नाजिल की बारे ये तो करीब ही देखते हो ना। तो अनज़लना का फर्स्ट पर्सन में सीगा आ गया, सीगा भी उसी तरह आ गया जैसा कि चीज़ थी। सुभान अल्लाह, तो पानी तो तुम नाजिल होते देखते हो ना आसमान से, फिर देखते हो फंबतना फीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम, फिर हर किस्म के इसमें से उम्दा चीज़ें निकाली अल्लाह ने, हर किस्म की, हर किस्म की नबातात, हर किस्म की चीज़ें। और ये इसमें सिर्फ नबातात नहीं है बल्कि इसमें और भी जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर शाबी कहते हैं कि वो इसमें शामिल है। तो अगर सिर्फ नबातात को भी देखें, फ़अम्बतना में सिर्फ उगाना नहीं है, देखें वो माहौल पैदा करना जिसमें कोई चीज़ उग सके, वो फिर उसको बड़ा करना, उसको आगे बढ़ाना, फिर उसमें फल फूल पैदा करना, बहुत सारी चीज़ें हैं ना इसमें। तो हर किस्म के ऐसे प्लांट्स भी पैदा किए और हर किस्म के जानदार भी पैदा किए उम्दा, और हर चीज़ का देखें सुभान अल्लाह एक बैलेंस रखा है, ऐसे ही नहीं है सिस्टम चल रहा। अब देखिए शेर हिरन को खाता है तो सारे हिरन ही ख़त्म हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं होते, अल्लाह ने उनका एक बैलेंस रखा। फिर उसके बाद फिर अगर शेर हिरन को खा के अपना सर्वाइवल कर रहा है तो फिर दुनिया में सारी तरफ शेर ही शेर होने चाहिए, नहीं, उनका भी एक बैलेंस रखा। मैंने एक चीज़ है उसके साथ कि ये कितनी तादाद में ये चीज़ होनी चाहिए। अब देखें कई चीज़ें ऐसी हैं वो इतने अंडे देती हैं, इतने बेशुमार अंडे देती हैं कि अगर वो सारे अंडे उनसे बच्चे निकल आएँ तो वो हर तरफ वही मक्खियाँ हो जाएं या हर तरफ वही मछलियाँ हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने बैलेंस कैसा खूबसूरत रखा, हम थोड़ी ये बैलेंस रखते हैं। हादा खल्कुल्लाह, ये है अल्लाह की क्रिएशन, اللہ کی تخلیق، جیسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں کو دکھا کے آسمان سے نظر شروع کرائی، اور آسمان سے نیچے دیکھو پہاڑ، پہاڑ سے نیچے آؤ جانور، پھر اوپر دیکھو آسمان، پھر اس کے بعد دیکھو نیچے، یہ ساری چیزیں، یہ ہے اللہ کی تخلیق. ف پھر ارونی مادہ خلق الذین من دونہ، دکھاؤ تو مجھے کیا پیدا کیا انہوں نے جن کو تم میرے سوا پوچھتے ہو، اس کے سوا جن کو تم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خلق اللہ ہے، جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان کا بھی کوئی شو کیس دکھاؤ، ان کی بھی کوئی البم دکھاؤ، ان کی بھی کوئی مخلوق دکھاؤ جو انہوں نے پیدا کی ہو، ان کی بھی کوئی کریشن دکھاؤ، ان کا آرٹ ورک دکھاؤ، انہوں نے کیا پیدا کیا، جو بھی بت ہیں یا انسان ہیں جن کو بھی تم پوچھتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے. کوئی دکھائے جی تو یہ فلاں پہاڑ نا میرے فلانے بھگوان نے بنایا، یہ گنیش نے بنایا، تو یہ لات اور عزا نے بنایا، تو یہ بچہ جو ہے نا یہ اس نے بنایا، اور وہ شیر جو ہے وہ اس نے بنایا، کوئی دکھا سکتا ہے ایسے؟ آپ ان لوگوں سے پوچھیں ذرا کہ کیا بنایا ہے انہوں نے، درخت کون سا بنایا ہے، کون سا کیڑا بنایا انہوں نے، کیا مطلب ان کا، کیا ان کا پیس آف ورک دکھاؤ نا. سبحان اللہ، کتنی زبردست طریقے سے ایک کے بعد ایک چیز کہہ کے ایک سوال تھرو کیا ان کی طرف، اور ان کو لا جواب کر دیا جو شرک کرنے والے ہیں، کہ دکھاؤ تو صحیح، تم بھی تو دکھاؤ کچھ. یہ تو جو تھوڑی سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، تم بھی تو دکھاؤ تمہارے معبود کیا کریٹ کر سکتے ہیں، ایک چیز بھی دکھاؤ اگر نہیں کچھ بنا سکتے، اور بنائیں بھی کیسے، وہ تو انہوں نے تو اپنے آپ کو خود بھی نہیں کچھ بنایا، وہ بھی تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے. اتنی بیوقوفی کی انتہا ہے کہ اسی کو پوج رہے جو اپنے ہاتھوں سے جس کو بناتے ہو. تو یہ بتاؤ وہ پیدا کیا خاک کریں گے، یہ کسی کی ضرورت کیا خاک پوری کریں گے جو کسی چیز کو تخلیق نہیں کر سکتے، ان سے تم ضرورتیں مانگنے جاتے ہو. یہ ہر اس کے لیے جس کے آگے کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے، جس سے کوئی دعائیں کرتا ہے، جس کے آگے کوئی سجدے کرتا ہے، جس کی کوئی عبادت کرتا ہے، یہ ہر اس کے لیے ٹرو ہے. بتاؤ اس نے کیا بنایا، اگر اس نے کچھ نہیں بنایا تو وہ کیسے تمہاری ضرورت پوری کرے گا، تمہیں کیسے بچے دے گا، تمہیں کیسے رزق دے گا، تمہیں کیسے صحت دے گا. اللہ اکبر. بلے ظالمون فی ضلال مبین، بلکہ جو ظالم لوگ ہیں کھلی گمراہی میں. جو ظالم ہے، ظالم ظلم کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا، تو ان کا ظلم کیا ہے، انہوں نے ان بتوں کو، ان جھوٹے معبودوں کو اٹھایا، وہ کسی قابل نہیں تھے، کسی مقام پہ نہیں تھے، ان کو اٹھا کے اللہ کے برابر کر دیا، اور اللہ کو ان کے برابر کر دیا. یہ کھلی گمراہی میں ہے. اللہ اکبر. جو انسان اللہ کی تخلیق میں غور کرے نا، تو پھر واقعی سمجھ آ جاتا ہے کہ کس نے بنایا ہوگا. اور کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، پوچھیں کسی سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ہمارے کسی اس نے بنایا جس کی ہم پوجا کرتے ہیں. وہ لیکن یہ فی ضلال مبین ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے اندر اندر دھنس چکے ہیں گمراہی میں، ایسے سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور اتنے اندر جا چکے ہیں کہ بالکل اندھے ہو گئے، ان کو دکھائیں بھی تو کچھ نہیں نظر آتا ان کو. اللہ اکبر. الحمدللہ یہاں تک تفسیر مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ ان آیات کو صحیح سمجھنا، ان کے اوپر عمل کرنا ہمیں آسان بھی کر دے، اور اس کی توفیق بھی دے دے، اور ان نشانیوں کو دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ کہیں بارش ہے اور کہیں طرح طرح کے جانور ہیں. آپ ان ہم سوچتے ہیں کہ یہ اچھا، یہ اگر سارے عشق معاشقے کے ڈرامے ہمارے ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کیا. ہاں تو یہ ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے، اس پہ غور کریں. ڈسکوری چینل دیکھیں، ان کے اوپر کتنی کتنی چیزیں وہ دکھاتے ہیں. اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کریں، وہ ان کے اوپر آپ بنا سکتے ہیں چیزیں جو لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. پھر دیکھیں آپ کے اس قرآن کے اندر ہی ہسٹری کتنی بتائی گئی ہے ان قوموں کی، ان قوموں کے چیزیں ان کے اوپر بنائیں اور وہ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ دیکھو یہ کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں. پھر اپنے جو ہیروز ہیں ان کی تو بیچاروں کی زندگیوں کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. کون تھا صلاح الدین ایوبی، کون تھا محمد بن قاسم، کون اور لوگ گزرے ہیں جو ہماری تاریخ کے ہیں، جنہوں نے کیا کیا کارنامے نہیں کیے. وہ ان کو بالکل بھلا دیا گیا، کیا تاریخ میں ہوا، تاتاریوں نے کیا کیا، ہماری تاریخ کیا تھی، مسلمان کیا تھے، انہوں نے کیسے اپنی ہاتھوں سے چیزیں گنوا دی اپنے اعمال کی وجہ سے، اسی لاو و لاو میں پڑھ کے، اسی لاو الحدیث میں پڑھ کے، پیچھے دیکھیں ہسٹری میں جا کے ساری یہی پتہ چلتی ہیں. آپ کسی ہسٹری کی کتاب میں دیکھ لیں، فلانے بادشاہ تھے وہ طاؤس و رباب میں پڑھ گئے، وہ شراب و کباب میں پڑھ گئے، اب وہ اس چیزوں کے اندر پڑھ گئے، تو پھر اس کے بعد یہ ہو گیا اور پھر ان کی سلطنتیں ختم ہو گئیں، وہ اور آ گئے ان کے اوپر قبضے کر لیں. دیکھیں آپ پیچھے سب میں یہی ہے، وہ دکھائیں آپ لوگوں کو چیزیں، بتائیں کہ ہسٹری کیا تھی، کیسے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہیں، کیا چیز ان کا ڈاؤن فال کا سبب بنتی ہے، اور قومیں عروج کیسے پاتی ہیں، مسلمانوں کے عروج کے دن کیسے تھے، ان کو کیسے عروج ملے، بہت کچھ ہے دکھانے کے لیے. مگر جب ہمارا ٹیسٹ یہ بن گیا نا کہ بس ہم نے عشق معاش کے دکھاتے جانا، ہر نکال کے ناول آپ دیکھ لیں، کوئی آپ فلمیں دیکھ لیں گے، یا تو مار دھاڑ یا پھر عشق معاش کے، بس یہ ان سے ہم بہت سبق لے رہے ہیں. کبھی آپ کو کبھی ایسا ہو کہ آپ کو کوئی ایسی چیز پڑھنے میں یا دیکھنے کا آپ کو کبھی ہو جس کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں، اس سے آپ کوئی یعنی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ سیکھ سکتے ہیں، کوئی صبر سیکھ سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز سیکھ سکتے ہیں، تو کبھی کبھار میں جب کہ اس کے اندر کوئی خرافات نہ ہوں، کوئی بے حیائیاں نہ ہوں، کوئی شرکی باتیں نہ ہوں، کوئی ایسی فضولیات نہ ہوں، تو پھر آپ ونس ا وائل دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کو بھی زندگی کا حصہ نہ بنا لیں. اسی طرح ایسے گیت جس کے اندر کوئی میوزک نہ ہو، جس میں کوئی ایسی باتیں نہ ہو، وہ آپ سن سکتے ہیں، گنگنا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی ایسا نہ بنا لیں کہ اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہر وقت اسی فیز کے اندر رہیں ہم. مومن ایسے نہیں ہوتا، اس کی زندگی بیکار نہیں ہوتی، بیکار چیزوں میں نہیں رہتا، اس کو اپنے وقت کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے کتنی قیمتی چیز ملی ہوئی ہے، میں نے اس کو گنوانا نہیں ہے، یہ جو میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، اس کو یہ فکر پڑ جاتی ہے، یہ میں کیا کر رہی ہوں، میں ویسٹ کر رہی ہوں اپنا ٹائم، اس کو ٹائم کا ویسٹیج، پیسوں کے ویسٹیج سے زیادہ پریشانی کا سبب بنتا ہے. ہم تو پیسوں کے ویسٹ ہونے پہ، نقصان ہونے پہ پریشان ہوتے ہیں، وہ وقت کے نقصان ہونے پہ پریشان ہوتا ہے، یہ میں کر کیا رہا ہوں، اس میں پڑھ کے میرے کو کیا فائدہ ہوگا. تو دیکھیں جو اتنی حد تک ٹھیک ہے، آپ ضرور ایسی کوئی کہانی پڑھنا چاہے، ہم بھی بچوں کو، آپ دیکھیں بچوں کی اس کے اندر سٹوریز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی سٹوریز کے تھرو ہمیں بتایا، کیونکہ جو بعض سبق آموز سٹوریز ہوتی ہیں ایسی جس سے انسان واقعی سیکھتا ہے، بچوں کو چھوٹی چھوٹی کہانیاں بتا کے ان کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ایک کتا جا رہا تھا، اس کے منہ میں ہڈی تھی، اس نے پانی میں دیکھا اور اس نے لالچ کیا، دیکھو اس کی بھی ہڈی چلی گئی، کیسی یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہم نے پڑھی تھیں، یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ سبق ہم سیکھیں ان سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کو بھی زندگی نہ بنا لیں کہ بس انہی کہانیوں کے اندر بس پڑھے رہے ہیں، اس کے بعد اور کسی چیز کا خیال نہیں. ایسی چیز اگر دیکھنے میں بھی آپ کو ویژول بھی مل رہی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ، پڑھنے میں مل رہی ہے پڑھ سکتے ہیں آپ، اور پھر بھی اعتدال، اس میں بھی اعتدال کیا، تو نہ تو ہم بالکل ہی ایک چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ او اسکرین پہ کوئی بھی چیز آئے گی وہ حرام ہی ہے، نہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس یہی چیزیں ہیں. تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، آپ کو ایک کرائیٹیریا مل جائے نا، تو اعتدال سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں آدھا وہ کیا کرو اور آدھا یہ کیا کرو، یہ نہیں اعتدال سے میرا مطلب. اعتدال سے مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہے نا، اس کو اسی پہ رہنے دیں، اس سے اٹھا کے کہیں اور ہی نا بڑھا کے رکھ دیں. اگر کوئی چیز مباح بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، اس میں نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی اس کے اندر گناہ ہے، کوئی اس کے اندر گناہ والی باتیں ہی نہیں ہیں، تو پھر بھی ان کو ان کے مقام پہ رہنے دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں امید کرتی ہوں کہ میں جتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، اور صحیح آپ نے سمجھ لی ہوں گی. افراط و تفریط ہوتی نا بہت خطرناک ہوتی ہے، کہ انسان اگر حرام کو حلال کر دے وہ بھی برا ہے، حلال کو حرام کر دے تو وہ بھی برا ہے، حلال کو بھی نہیں آپ حرام کر سکتے. تو اس لیے ہر چیز کو اس کے مقام پہ رہنے دیں. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق دے. اگر پھر بھی کوئی کوسچن ہوئے تو انشاءاللہ پھر ہم دیکھ لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیے. کوئی کوسچن ہوئے تو انشاءاللہ پھر ہم دیکھ لیں گے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين